दिन भर, तारीख 22 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नाबालिग अपराधियों के मामले में राज्यसभा ने पारित किया विधेयक, जघन्य अपराधों के लिए अभियुक्त पर चल सकता है वयस्कों की तरह मुकदमा।
दोस्त इन फायर पुलिस से आए, दोस्त इन पुलिस से नो, आई थिंक द आई साउथ मोशन इज अडॉप्टेड।
मेरी है सारे भारतीयों को पुकार, बलात्कार करने वालों को अब तुम करो शिकार।
बताएंगे कि नए विधेयक और पुराने कानून में क्या अंतर होगा। सीमा सुरक्षा बल का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 10 की मौत।
मेरी दुकान है 200 मीटर के करीब, मैंने देखा जी प्लेन क्रेश करते हुए सीधा दीवार के साथ गिरी और दीवार टूटते हुए अंदर गई, अंदर में जाकर।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। लोकसभा में पारित जुवेनाइल जस्टिस बिल को आज राज्यसभा में भी लंबी बहस के बाद पारित कर दिया गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले निर्भया कांड के नाबालिग अभियुक्त की रिहाई पर सरकार की तीखी आलोचना हुई थी। इस बिल के पारित होने से इस अभियुक्त की रिहाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब 18 साल से कम उम्र वाले अपराधियों के अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा देने का प्रावधान होगा और गंभीर अपराधों के लिए सजा देने के नियम और सख्त हो जाएंगे। इराकी अधिकारियों का कहना है कि सरकारी बलों ने रणनीतिक तौर पर अहम रामादी शहर के केंद्र पर कब्जा कर लिया है। मई से इस शहर पर आईएस का कब्जा था। अधिकारियों के मुताबिक जनजातीय समुदायों के लड़ाकों और अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना की मदद से इराकी सेना ने कल मध्यरात्रि से शुरू हुए इस सैन्य अभियान में अच्छी बढ़त हासिल की है। इराकी सरकार इस अभियान के लिए महीनों से तैयारी कर रही थी। अनुमान है कि रामादी के अंदर सैकड़ों आईएस लड़ाके छिपे हुए हैं। इस साल जमीन और समुद्र के जरिए यूरोप पहुंचने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। प्रवासन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुताबिक इनमें से करीब 80% प्रवासी समुद्र से ग्रीस पहुंचे हैं। इनमें से लगभग आधे लोग सीरिया से हैं और अफगानिस्तान से भी कई लोग दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। दक्षिण अफगानिस्तान के संगीन शहर में तालिबान और सरकारी सेना के बीच तेज लड़ाई जारी है। तालिबान इस शहर और आसपास के इलाके पर पूरा कब्जा करने के लिए लड़ रहा है। मेजर रिचर्ड स्ट्रीटफेल्ड ब्रितानी सेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि इस इलाके में अफीम की अच्छी फसल का मतलब है कि अगर तालिबान यहाँ कब्जा कर लेता है तो उसे रणनीतिक तौर पर काफी बढ़त मिलेगी। तालिबान को इससे काफी पैसा मिलेगा जिससे वो हथियार और गोला बारूद खरीद सकते हैं और इसका मतलब है उन्हें और सफलता भी मिल सकती है। 1992 में जब तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने संगीन जिले को ही जीता था, इसलिए ये चिंताजनक बात है। ये थे मेजर रिचर्ड स्ट्रीटफेल्ड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। माली की सरकार ने सुरक्षा सरोकारों के चलते 10 दिन के अलर्ट की घोषणा की है। एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार के इस कदम से पुलिस और सेना को अतिरिक्त अधिकार मिल जाएंगे। नवंबर में चरमपंथी गुट अल मुराबितुन के लड़ाकों ने राजधानी बमाको के एक होटल पर हमला किया था जिसमें 20 लोग मारे गए थे। चीन के एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार वकील को नस्ली नफरत फैलाने का दोषी माने जाने के बावजूद रिहा कर दिया गया है। पू जी कियांग ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाली थी जिनमें चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की गई थी। इसके लिए उन्हें 3 साल की सजा दी गई है जिसे निलंबित रखा गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। इस समय की बड़ी खबर भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा से आ रही है, जहां राजनीतिक दलों की लंबी बहस के बाद जुवेनाइल जस्टिस बिल पारित हो गया।
दोस्त इन फायर पुलिस से आए, दोस्त इन पुलिस से नो, आई थिंक द आई साउ द आई साउ द आई साउ।
राजनीतिक दलों ने अपने अपने पक्ष रखे, अपने अपने तर्क रखे। आरपीआई के रामदास अठावले को सुनते हैं।
मेरी है सारे भारतीयों को पुकार, बलात्कार करने वालों को अब तुम करो शिकार। ये वासना, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। में कानून में व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके हाथ पाए तोड़ना चाहिए और उनको इसी तरह का सबक सिखाना चाहिए कि दूसरा कोई भी इसी तरह का बलात्कार करने के लिए आगे ना आए। यही इसी तरह का कानून होना चाहिए, हमारी सूचना है। और हाथ पैर तोड़ने का भी इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए।
रामदास अठावले के अपने तर्क थे। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में लोकसभा में ये विधेयक पारित हुआ था और राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद 18 साल से कम उम्र के अपराधियों की सजा तय करने वाला कानून और कड़ा हो जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद ज्योति सिंह के माता पिता बोले,
मुझे तसल्ली है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दुख है कि हमें हमारी निर्भया को न्याय नहीं मिला।
आगे तो समय बताएगा लेकिन आज ये बिल पास हो गया तो हमें इस मन को तसल्ली ये हुई है कि कम से कम हमारे को नहीं लेकिन आने वाले बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा।
ज्योति सिंह के माता पिता। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने इस पूरी बहस को बड़े गौर से सुना। कौन कौन से नेताओं ने चर्चा में क्या कहा, क्या तर्क रखे, उन्हीं से सुनते हैं।
जुविनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन विधेयक पेश करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बिना किसी कागज या दस्तावेज हाथ में लिए बेहद संक्षिप्त में अपनी बात रखी। सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा रहे नाबालिग आरोपी को वयस्क की तरह सजा दिए जाने वाले प्रावधान पर। उन्होंने कहा,
इट डज नॉट मीन दैट अ 16 ईयर ओल्ड गोज टू जेल एट ऑल।
विधेयक का ये मतलब कतई नहीं है कि हत्या का आरोपी हर 16 साल का किशोर जेल जाएगा, बल्कि जुविनाइल बोर्ड हर मामले की पड़ताल करके ये देखेगा कि हत्या किसी सुव्यवस्थित मंशा से की गई थी या आवेग में आकर बिना सोचे समझे। कई मापदंडों को समझबूझकर ही नाबालिग पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने और जेल भेजने का फैसला किया जाएगा।
मेनका गांधी ने यह भी कहा कि जेल में नाबालिग को वयस्क अपराधियों के साथ नहीं बल्कि बोर्स्टल यानी एक अलग कक्ष में रखा जाएगा। इस पर डीएम के सांसद कणिमोई ने ध्यान दिलाया कि भारतीय जेलों में ऐसे कोई बोर्स्टल अभी मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आम जानकारी से अलग नाबालिगों की अपराध दर बहुत कम है। इस मुद्दे पर ऐसी ही बनी कुछ भ्रांतियों की तरफ इशारा करते हुए समाजवादी पार्टी के रवि प्रकाश ने कहा,
ये बात भी कही जा रही है कि जो संपन्न घरों के बच्चे हैं वो सामान्यतः अपराध नहीं करते और जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो अपराध करते हैं। ये नजरिया अच्छा नहीं है। जिन बच्चों के दिल में आग लगी हुई है उनको पड़ोसी की बड़ी गाड़ी बुरी लगती है, जिस बच्चे को पड़ोसी का बड़ा मकान बुरा लगता है, आप उनके लिए सख्त कानून बनाना चाहते हैं। उन बच्चों को आप अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहते, उन बच्चों को आप अच्छी पहचान नहीं देना चाहते, आपकी नीयत में खोट है।
उन्होंने शिक्षा में कमी की वजह से बच्चों के उपेक्षित रहने के मुद्दे को भी रेखांकित किया। राज्यसभा में नामित सदस्य कारोबारी अनु आगा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की सिफारिश करते हुए जस्टिस वर्मा समिति का हवाला दिया और कहा कि समिति ने कानून की नजर में नाबालिग माने जाने की उम्र सीमा को 18 वर्ष रखने की सिफारिश की थी।
जब एक किशोर अपराध करता है तब एक समाज के तौर पर ये हमारी विफलता है। उम्र कम करने के बजाय हमें जुविनाइल होम्स की बदहाली पर चर्चा करनी चाहिए जो बच्चों का पुनर्वास करने में असमर्थ हैं।
विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बहस में बोलते हुए कहा कि बिल को कड़ा करने के अलावा शहरों की सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था और पुलिस की पेट्रोलिंग ज्यादा करने पर भी काम किया जाना चाहिए। कांग्रेस से ही आनंद शर्मा ने कहा कि विधेयक में जघन्य अपराध की परिभाषा साफ करने की जरूरत है।
जानकारी के मुताबिक और देशों में ये पाया गया कि जघन्य अपराधों के मामले में जब नाबालिग को वयस्कों की तरह जेल में रखा गया तो उनका गहन शोषण हुआ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा न हो।
ऐसी ही सिफारिश करते हुए एनसीपी की वंदना चौहान, बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा और जनता दल यूनाइटेड की कहकशां परवीन सभी ने जेलों की बदहाल स्थिति पर बात की। कहकशां परवीन ने बाल सुधार गृहों पर शोध किए जाने की मांग की और कहा कि संसद का मकसद बच्चों में सुधार होना चाहिए, उम्र कम या ज्यादा करना नहीं।
एक कहावत है कि लगी है भूख, भरा है पेट तो जग जग मगाता है, और लगी है भूख तो ईमान भी डगमगाता है। बच्चों को जब आप वहां से निकालें तो उसे सही शिक्षा और उसे पुनर्वास का आप इंतजाम करें।
वहीं तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन बोलते हुए भावुक हो गए। बिल का समर्थन करने से पहले उन्होंने कहा,
गॉड फॉरबिड इफ 16th of December 2012,
खुदा ना करे पर अगर दिसंबर 2012 मेरी बेटी के साथ हुआ होता तो न्याय व्यवस्था का रास्ता अपनाने और बड़े वकीलों को पैसे देने की जगह शायद मैं पिस्तौल खरीदता और हमलावरों को मार देता।
सीपीआईएम की रीता प्रता बैनर्जी ने साफ किया कि संशोधित कानून निर्भया केस पर लागू नहीं होगा बल्कि आने वाले समय में हुए अपराधों पर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद को संयम रखे सोचना चाहिए कि फिर अगर ऐसा जघन्य अपराध सामने आया और अपराधी मान लीजिए 15 साल 11 महीने का हुआ तो क्या बिल में फिर संशोधन किया जाएगा। दिव्या आर, बीबीसी दिल्ली।
महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक में नाबालिग अपराधियों की सजा के प्रावधान के अलावा बच्चे गोद लेने से जुड़े नियम और बच्चों के खिलाफ हिंसा, मसलन उनका अपहरण, तस्करी या फिर उन्हें नशीले पदार्थ देने पर सजा के नियम भी बनाए गए हैं। और अब आपको मौजूदा कानून और प्रस्तावित कानून के प्रावधान समझा देते हैं। नितिन श्रीवास्तव से मैंने पूछा कि वर्तमान कानून में 18 साल से कम उम्र के अभियुक्त को नाबालिग माना जाता है, ये जो संशोधित कानून है ये क्या कहेगा?
उसके हिसाब से अगर जुर्म जघन्य हो, यानी आईपीसी में उसकी सजा 7 साल से ज्यादा हो, तो 16 से 18 वर्ष की उम्र के नाबालिग को ही वयस्क माना जाएगा।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत समेत दुनिया भर के करीब 190 देशों ने यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कानूनन किसी बच्चे को वयस्क मानने के लिए उम्र सीमा को 18 साल रखने की सलाह भी दी गई है।
यहाँ पर सवाल यह भी आता है कि मुकदमा चले कहाँ, क्योंकि मौजूदा कानून में 18 साल से जो कम के अभियुक्त हैं उनका मुकदमा सामान्य अदालत की जगह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। हाँ, प्रस्तावित कानून क्या कहता है?
जी, जो प्रस्तावित कानून है उसके मुताबिक नाबालिग को अदालत में पेश करने के एक महीने के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये जांच करेगा कि उसे बच्चा माना जाए या वयस्क, और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद वयस्क माने जाने पर किशोर को मुकदमे के दौरान भी सामान्य जेल में ही रखा जाएगा। जबकि विशेषज्ञों की राय है कि फैसले के लिए एक महीने का समय बहुत कम है, तो पुलिस चार्जशीट में या अदालत के फैसले में दोष साबित हुए बगैर किशोर को वयस्कों की जेल में रखना गलत होगा।
ये तो बात हो गई, सजा की बात कर लेते हैं। जो मौजूदा कानून है उसमें ये है, दोषी पाए जाने पर नाबालिग अभियुक्त को अधिकतम 3 साल के लिए किशोर सुधार घर भेजा जा सकता है, जैसा कि इस निर्भया के केस में हुआ। संशोधित कानून क्या कहेगा?
इस मामले में जो प्रस्तावित कानून है वो बहुत साफ है। उसके मुताबिक अगर नाबालिग को वयस्क माना जाए तो मुकदमा बाल अदालत में चले और आईपीसी के तहत सजा हो, उम्र कैद या मौत की सजा नहीं दी जा सकती। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में किए गए अध्ययन के मुताबिक किशोरों को कड़ी सजा देने से उनकी अपराध करने की दर में कोई कमी नहीं आती, बल्कि सुधार गृहों में बेहतर सुविधाओं से लंबे दौर में बदलाव जरूर लाया जा सकता है।
ये विशेषज्ञों का मानना है। जो नया कानून आएगा उसका क्या नया नाम होगा?
उसका नाम होगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल के तहत होगा। 2014 का कानून है असल में जब ये प्रस्तावित था हुआ था, और इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। और ये तो हमें पता ही है कि दिसंबर 2012 में जो सामूहिक बलात्कार का फैसला आया था, निर्भया कांड में जो फैसला आया था, उसके बाद से ही जो मौजूदा कानून रहा है उसमें संशोधन की मांग तेज हुई है। कैबिनेट ने संशोधनों को साल 2014 में पारित भी किया, पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद उसे एक संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। समिति ने 16 से 18 वर्ष की उम्र के नाबालिगों पर आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने का विरोध किया, लेकिन मोहनलाल इसके बावजूद कैबिनेट और लोकसभा ने नए बिल को स्वीकृति दे दी है।
नितिन श्रीवास्तव बता रहे थे कि जो वर्तमान कानून है और प्रस्तावित कानून के प्रावधान किस तरह से होंगे वो हमें ये समझा रहे थे। भारत में कितने नाबालिग अपराधी हैं? अगर आपकी जिज्ञासा इस सवाल को जानने की है तो आप इस स्टोरी को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आइए। दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार 10 लोग की मौत हो गई। इस बारे में बीएसएफ के तकनीकी कर्मी सवार थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि विमान उड़ने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विनीत खरे ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीके पाठक से पूछा कि ये दुर्घटना कैसे घटी,
क्यों हुआ, क्या हुआ? हेलीकॉप्टर ठीक ही फ्लाई कर रहा था, पायलट सब एक्सपीरियंस थे, रोज ही फ्लाई कर रहे थे, क्या हुआ अभी तो बिना इन्वेस्टिगेशन कैसे पता चलेगा।
प्रिलिमिनरी जो रिपोर्टें आ रही हैं कि हवा में गया, कुछ टेक्निकल स्नैग्स आए, वापस आया, उस दौरान ये दुर्घटना घटी है।
अभी देखिए, ये एक दो गांव वाले अपना कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, किसी ने ऐसे तो कुछ देखा नहीं कि क्या हुआ। हाँ, इतना सही है कि जिस डायरेक्शन से टेक ऑफ किया था, जब उसको हिट किया उस वॉल को, तो उसी डायरेक्शन से किया, काफी डायरेक्शन से, तो मतलब कहीं ना कहीं किसी वजह से यू टर्न हुआ उसका, चाहे वो टेक्निकल स्नैक से हुआ हो या पायलट कर रहा हो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। अब ये तो ब्लैक बॉक्स और सारी चीजों के डिकोडिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि हुआ क्या।
जो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं सर कि ये काफी बड़ा हादसा है ही, लेकिन ये और बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि बगल में ऑयल फैसिलिटी है, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये शायद वहाँ चला जाता तो ये और बड़ी चीज हो सकती थी।
कहाँ जाता, कैसे, इसको क्या कहा जा सकता है, आप बताइए। गाँव में गिरता कि पेट्रोलियम फैसिलिटी पर गिरता, एयरपोर्ट में आके गिरता, ये तो बिल्कुल, आई डोंट नो, इसका कोई आंसर है क्या, मुझे बताइए आप। बहुत कुछ हो सकता था, हो सकता है कुछ भी ना हुआ होता, ये भी तो हो सकता है ना।
जी 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 सर, ये जो रांची जा रहा था
उससे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना कि भाई यहाँ आके क्या गिरा है, और कोई डैमेज नहीं, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। अब गांव में गिरता है या एयरपोर्ट पे गिरता है, किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर गिरता है, किसी एयरक्राफ्ट से टेकऑफ के टाइम में टकरा ही जाता, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था।
सर ये थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये रांची जा रहा था, ये चार्टर्ड एयरक्राफ्ट था?
चार्टर्ड नहीं, बीएसएफ का एयरक्राफ्ट, नॉट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, और रांची जा रहा था। सरकारी, ये सरकारी काम से ही जाता है।
तो क्या था सरकारी काम, सर बता पाएंगे थोड़ा?
वहाँ हम लोग के हेलीकॉप्टर है, उसको रिपेयर के लिए जा रहा था, मेंटेनेंस सर्विसिंग के लिए।
ये थे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीके पाठक, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी विनीत खरे। विनीत खरे ही शाहबाद मोहम्मदपुर पहुंचे, जहां से कुछ दूर ये दुर्घटना हुई। सुनिए उनकी आंखों देखी।
आपको शायद हवाई जहाज के उड़ने की आवाज आ रही हो। ये हादसा जहां पर हुआ है वो हवाई अड्डे का जो पेरीमीटर है, बाहरी दीवार है, उसको तोड़ते हुए विमान उस इलाके के भीतर घुसा है। ये शाहबाद मोहम्मदपुर गांव के नज़दीक है, बगल से ही रेलवे लाइन गुजरती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने जिस जगह पर हादसा हुआ उसे घेर रखा है। वहाँ पर एक कैविटी सी बन गई है, जो विमान है उसके हिस्से वहाँ पर पड़े हुए हैं। जो फोरेंसिक अधिकारी हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ। फोरेंसिक के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोग अभी भी काफ़ी शॉक में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हुआ। हमारी एक आई विटनेस थे जो जिन्होंने हादसा देखा।
राजकिशोर जी, आपने क्या देखा?
मैंने देखा जी, प्लेन क्रैश करते हुए सीधा दीवार के साथ गिरी और दीवार तोड़ते हुए अंदर गई। अंदर में जा करके जो दीवार के पास ही आग लगते हुए अंदर दीवार तोड़ दिया, अंदर जा करके आग लगी, फिर हमने वहाँ जा करके थोड़ी देर वीडियो बनाया, फिर जा करके वापस आ गया।
और आपकी दुकान है यहाँ पे?
जी, मेरी दुकान है 200 मीटर के करीब।
जी, तो और क्या मदद कितनी देर में पहुंची यहाँ?
मदद 20 मिनट के बाद जो है वो दमकल उमकल आई वहाँ आग बुझाने के लिए, फिर वहाँ से हमने आया।
तो यहाँ से क्या दिख रहा था?
यहाँ से दिख रहा था आग लग रही है, पब्लिक बाहर से अंदर से बाहर आ रही है।
और कितने लोग थे यहाँ पे जब ये हादसा हुआ है?
तो हादसा हुआ तो यहाँ मुश्किल से 10-20 लोग होंगे बाहर रोड पे।
क्या नाम है आपका?
मेरा नाम जितेंद्र शर्मा।
जितेंद्र जी, देख रहा हूँ कई लोग थोड़े घबराए हुए हैं यहाँ पे।
हाँ, डर का माहौल है टैंक की वजह से।
क्यों?
ये जो भारत पेट्रोलियम टैंक है ना, इसके वजह से डर की माहौल बना हुआ है।
एक्सीडेंट में था कि वो किसी पेट्रोल गैस वगैरह में ना लग जाए ना, इसलिए।
अच्छा,
वहाँ की वजह यहाँ हो जाता तो गाँव साफ था।
हाँ, मैं देख रहा हूँ, ये मतलब ये जहाँ पे घटना हुई है उसके बगल में ही, तो जो तेल जरूरत होती है विमानों को उसके लिए ही है। भाई आप अगर बगल में रहते हैं तो एयरपोर्ट है वहाँ से, तो विमान उड़ेंगे, तो डर किस चीज़ का है फिर?
डर यही है कि गांव के अंदर, गांव नज़दीक में है, फिर गांव के ऊपर से उड़ान भरती है, लैंड भी होती है। इसके 400 मीटर पीछे जाओगे आप, JMR के एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी वजह से डर बना हुआ है। इधर रेलवे है, चारों साइड से घेर दिया है बीच में गांव को।
तो एक तरफ आपके
पेट्रोल है, एक तरफ एयरपोर्ट है और दूसरी तरफ रेलवे है, पूरी घेर दिया।
कितने लोग रहते हैं गांव में? करीब
7,000 घर के गांव है, बस्ती है
7,000।
हाँ जी, शाहबाद मोहम्मदपुर गाँव का।
विनीत खरे थे शाहबाद मोहम्मदपुर गाँव में, जहाँ से पास में सीमा सुरक्षा बल का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
ज्योति कलश चल की
तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
सिने राग, संगीत के वो सुर जिन्हें सुनकर सुध बुध खो बैठे आप।
पास आइए के हम नहीं,
सुर जो खोल दें यादों के पिटारे।
मन रे तू काहे ना धीर धरे।
मेरे सामने आ गया ना वो, तो उस कुत्ते को वहीं जान से मार दूंगा।
इंसानी सुख दुख, राग द्वेष,
बाउजी मैं कह रहा हूँ, बाउजी मैं।
और प्रेम की कहानी।
बहुत अच्छी हिंदी बोलती है।
अचला शर्मा का लिखा
और परवेज आलम का निर्देशित नाटक बंधक।
जमकर के बोलो।
बीता एक और साल।
किसने क्या पाया और क्या खोया?
आपके सपनों को शब्दों में रखो।
अंतर्राष्ट्रीय पटल की उथल पुथल।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
पहली सी मोहब्बत
साथ ही याद मलिका तरन्नुम की। बीबीसी हिंदी रेडियो के वर्षांत कार्यक्रमों की सौगात 25 दिसंबर 2015 से
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
हमारी ये विशेष प्रस्तुतियां सुनना मत भूलिएगा। वापस समाचारों पे आते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जिसमें दिल्ली और दिल्ली क्रिकेट संघ में कथित घोटाले की जांच के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी विधेयक पारित किया गया। अविनाश दत्त से और जानकारी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा और कहा कि वे इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी से डर गए हैं।
आज हम उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर जो घोटाले करे हैं, स्टेडियम बनाने के अंदर जो घोटाले करे हैं, खेलकूद के अंदर जो घोटाले करे हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स के अंदर जो घोटाले कर रहे हैं, उसकी जांच हम लोग इसके जरिए कर रहे हैं, इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए। इस हाउस की पूरी पावर है। और ये तो साबित हो चुका है जी कि घोटाला हुआ। जस्टिस मुदगल को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि घोटाले हुए थे। हाईकोर्ट भी मानता है कि घोटाले हुए, लेकिन वो कह रहे हैं घोटाले में इनके बॉस का नाम नहीं है। लेकिन जो अभी कीर्ति आजाद जी ने थोड़े दो कल या परसों उन्होंने जो वीडियो दिखाया था, वीडियो में कीर्ति आजाद जी उनके सामने कह रहे हैं, इनके बॉस के सामने, कि ये घोटाला चल रहा है। और इनके बॉस ने साफ साफ बोला कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि सारे घोटालेबाज अपने ही आदमी हैं, इनको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है।
अरविंद केजरीवाल ने सदन में कहा कि एक अफसर ने उन्हें बताया था कि जेटली के घर पर मीटिंग हुई और उसके बाद ये सीबीआई की रेड हुई। आखिर इस रेड में सीबीआई को क्या मिला, ये अब तक नहीं बताया गया। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपनी प्रतिबद्धता साबित करें।
तो वो कहते हैं ना कि दाढ़ी में तिनका, तो जैसे ही लोग कहते हैं टीडीसी में घोटाला, तो वो खड़े कहते हैं मेरी मां नानी कर दी, मेरी मां नानी। तो समझ में नहीं आया कि अचानक उनको तकलीफ क्यों होती है। हमने अपने मंत्री को जरा सा सबूत होते ही हमने अपने मंत्री को निकाल दिया था। अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर दम है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो वो भी अपना दम दिखाएं और सबसे पहले इनको अपने कैबिनेट के बाहर का रास्ता दिखाएं, तो जनता समझेगी कि उनके अंदर भी दम है। जैसा आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, वैसे ये भी करके दिखाएं।
केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर किए गए मानहानि के मुकदमे का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि अब सब साफ हो जाएगा, लेकिन साथ ही केजरीवाल ने ये भी कहा कि ऐसा करके अरुण जेटली ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अविनाश दत्त, बीबीसी दिल्ली।
डीडीसीए के मामले पर उठा पटक। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। चीन ने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे सबसे चर्चित वकील पू जिकियांग को सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना करने के लिए 3 साल जेल की सजा दी है। हालांकि ये सजा फिलहाल स्थगित रहेगी। उन्हें 19 महीने नजर बंद रखने के बाद रिहा किया गया। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ये सरासर अन्याय का मामला है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के विलियम नी का मानना है कि इस फैसले के बाद चीन में मानवाधिकार के लिए संघर्ष कर रहे सबसे साहसी योद्धा वकालत नहीं कर पाएंगे।
Puu Jiqiang could have faced 8 years, so obviously this is much better. I mean, he won't have to spend one more day in a detention.
Puu Jiqiang को 8 साल तक सजा हो सकती थी, इसलिए ये निश्चित तौर पर बेहतर है। मेरा मतलब है कि उन्हें अब एक और दिन भी नजरबंदी में नहीं बिताना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें नजरबंद किया ही नहीं जाना चाहिए था। हालांकि इस सजा के बाद वे वकालत नहीं कर सकते, इसलिए इस नजरिए से ये पूरा मामला ही अन्याय का है।
विलियम नी के शब्द। वकील पू जिकियांग ने कलाकार आई वई वई की वकालत की थी। पू जिकियांग के समर्थक मानते हैं कि चीनी अधिकारियों का उनके साथ बर्ताव विरोधियों के लिए एक चेतावनी है। उनके समर्थक कहते हैं,
पू जिकियांग निर्दोष हैं और हमने इसकी वकालत की, लेकिन कोर्ट का मानना है कि सोशल मीडिया वेबों पर लिखे गए 7 संदेशों के जरिए उन्होंने 2 अपराध किए हैं। हम ये अब भी मानने को तैयार नहीं। हालांकि उन्हें सजा दी गई है जो फिलहाल स्थगित रखी गई है, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें आपराधिक रूप से दंडित किया गया है, इसलिए भविष्य में अब वो वकालत नहीं कर सकेंगे।
मो शाओपिंग के शब्द। मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील पू जिकियांग के समर्थक गुआन जिंग कहते हैं कि अधिकारियों को पू ज़िकियांग पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था।
वो पूरी तरह से निर्दोष है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ये सिर्फ शब्द थे। आप किसी को सिर्फ शब्दों के लिए कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? कौन से शब्द गलत हैं या कौन से शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कोई व्यक्ति क्या बोल सकता है और क्या नहीं बोल सकता? क्या इसको निर्धारित करने के लिए कोई कानूनी मापदंड है?
गुआन जिंग के शब्द चीन ने दुनिया भर में प्रचलित सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक, गूगल और ट्विटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है और इसकी जगह चीन अपने सोशल नेटवर्क वेबो का इस्तेमाल करता है और इस पर सरकार की नजर रहती है। इस सजा ने चीन में मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वालों और सरकार द्वारा उनके उत्पीड़न की ओर एक बार फिर से ध्यान खींचा है।
तो जैसा कि आपने सुना, चीन ने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे सबसे चर्चित वकील पू ज़िकियांग को सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना करने के चलते 3 साल जेल की सजा सुनाई। हालांकि ये सजा फिलहाल स्थगित रहेगी। इस खबर के बाद बात करते हैं क्रिकेट यानी कि खेल समाचारों की। और जैसा कि मैंने कहा कि खेल नहीं क्रिकेट बात एक ही है, तो आज भी आदेश शुरुआत क्रिकेट से कर रहे हैं और वो भी संन्यास से।
जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान और अपने बल्ले से दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान करने वाले ब्रेंडन मैकुलम ने अगले साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है। यानी वो अपना बैट खूंटी पर टांग देंगे। उनके इस फैसले से तमाम क्रिकेट जगत हैरान है। ब्रेंडन मैकुलम की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने इसी साल विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और वो फाइनल तक पहुंची। ब्रेंडन मैकुलम अभी तक 99 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 6,273 रन बना चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके बल्ले से न्यूजीलैंड के लिए इकलौता 3 शतक निकला है। उनका सर्वाधिक स्कोर 302 रन है। इसमें उनके 11 शतक और 31 अर्धशतक भी शामिल है जो उनका टेस्ट करियर रहा है। उनके बल्ले के कहर का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पूरे 100 छक्के अभी तक लगाए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में भी उन्होंने 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 5 शतक की मदद से 5,909 रन बनाए हैं। 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी उनका जलवा रहा है और उन्होंने 2 शतक की मदद से 71 मैचों में 2,140 रन बनाए हैं। आईपीएल में भी वो कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक विकेट कीपर के तौर पर उनका रिकॉर्ड बेहद दमदार है। उन्होंने 99 टेस्ट मैचों में 194 कैच पकड़े हैं और 11 स्टम्प किए। एक दिवसीय क्रिकेट में भी उन्होंने 258 कैच पकड़े और 11 स्टम्प किए। तो निश्चित रूप से जो ब्रेंडन मैकुलम है,
शानदार
वैसा खिलाड़ी न्यूजीलैंड को मिलना बहुत मुश्किल
और मतलब खासकर ऐसे समय में जबकि उनकी भूमिका वर्ल्ड कप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी महत्वपूर्ण थी और न्यूजीलैंड को कहां से कहां पहुंचा दिया।
और सबसे बड़ी बात की अगले साल 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट होना, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरी जगह अगर युवा खिलाड़ियों को मौका मिले तो बहुत अच्छा रहे। तो निश्चित रूप से विदेशी खिलाड़ियों की खेलों के प्रति जो एक भावना रहती है वो एक बार फिर से प्रदर्शित हुई कि जब उन्हें लगता है कि अब खेलों से हटने का समय आ गया है तो वो बहुत आराम से हट जाते हैं। इसी बीच बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत के लिए एक अच्छा समाचार आया जब भारत के मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी ने मैक्सिको ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने थाईलैंड के बॉडी निसारा और निपित फोन पुआंग पुआपेच को 22-20 21-18 से हराया। इससे पहले भारतीय जोड़ी यूएस ओपन और डच ओपन के फाइनल में पहुंची थी लेकिन वहां उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। तो जाते जाते ये साल उनकी झोली में एक खिताब डाल गया।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। लोकसभा में पारित जुवेनाइल जस्टिस बिल को आज राज्यसभा में भी लंबी बहस के बाद पारित कर दिया गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इराकी अधिकारियों का कहना है कि सरकारी बलों ने रणनीतिक तौर पर अहम रामादी शहर के केंद्र पर कब्जा कर लिया है। इस साल जमीन और समुद्र के जरिए यूरोप पहुंचने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। दक्षिण अफगानिस्तान के संगीन शहर में तालिबान और सरकारी सेना के बीच तेज लड़ाई जारी है। माली की सरकार ने सुरक्षा सरोकारों के चलते 10 दिन के अलर्ट की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से पुलिस और सेना को अतिरिक्त अधिकार मिल जाएंगे। चीन के एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार वकील को नस्ली नफरत फैलाने का दोषी माने जाने के बावजूद रिहा कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।